झूम रहा मेरा मन हो के मगन
झूम रहा मेरा मन मेरा मन
बाबा मिलते हो सामने कह के मेरे बच्चे जगाया जो आपने
हर पल भी होता है अब तो मिलन झूम रहा मेरा मन मेरा मन
ओम शांति। गीत क्या सुना? वहाँ मेरे भाग्य मुझे और सवेरे आँख खुलते ही सामने बाबा। ये भाग्य है ना हमारा। लोग जब दुनिया में आँख खोलते हैं तो सामने क्या होता है, हैं बोलो, समस्याएं, टेंशन। आज फिर ये है, उससे ही गड़बड़ हो जाती है। और यहाँ उठते ही प्रभु मिलन होता है, उठाता भी है सुलाता भी है। तो बाबा ने कल क्या याद दिलाया हमें, हमारा श्रेष्ठ भाग्य जिसे हम भूले रहते हैं, आज हम उसे याद करेंगे बहुत अच्छी तरह। बाबा जब हमें देखता है तो इस नजर से देखता होगा ना, ये बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। हम भी अपने को उसी नजर से देखें जिस नजर से बाबा हमें देखता है। हैं भाग्यवान? माताएं क्या समझती है? कोई कोई का लग रहा है सोच रहे हैं पता नहीं है या नहीं। समस्याएं तो बहुत हैं परिवारों में। हैं भाग्यवान? समस्याएं होते भी भाग्य बहुत बड़ा है, और भाग्यवान आत्माओं के आगे समस्याएं ठहरेंगी भी नहीं। मुझे याद आई एक कहानी राजा भोज की है। तो राजा भोज ने सोचा मैं अपना सारा खजाना दान कर दूं। मंत्री ने सोचा भाई राजा तो सारा खजाना दान कर देगा। तो जहाँ दान की व्यवस्था की गई थी वहाँ मंत्री ने दीवार पर लिखा दिया कि मनुष्य को कुछ धन संपत्ति आप आपदा काल के लिए, इमरजेंसी के लिए बचा के अवश्य रखनी चाहिए। भोज पहुँच गए और उन्होंने पढ़ा तो समझ गए कि ये मंत्री ने लिखाया है ताकि मैं सारा दान न करूं। तो उसने उसके नीचे दूसरी लाइन लिखा दी, जो भाग्यवान है उनके पास आपत्काल आएगा ही नहीं। मंत्री ने सोचा ये तो मेरे से बुद्धिमान हो गए, सोचा अब क्या करूं, दान चालू रहा। दूसरे दिन उसने सोच समझ के लिखा दिया फिर नीचे कि कभी भाग्य साथ न दे, ऐसे समय के लिए भी धन संपत्ति रख लेनी चाहिए। भोज ने उसके नीचे फिर लिखा दिया, सोचो अगर भाग्य ही साथ नहीं देगा तो धन संपत्ति कैसे साथ देगी, और दान चालू रखा। तो हमारा सबसे बड़ा भाग्य है भगवान हमारे साथ हो गए। भाग्य लिखेंगे आप और खुशी में रहने के संकल्प भी लिखेंगे। कभी कभी शब्द बाबा ने वापस ले लिया, दिया क्या दिया, सोच लो। बाबा के आगे तो देखो सब हाथ उठा देते, बड़े नशे में रहते हैं ना, पर बाहर आते ही वापस ले लेते हैं ना। तो पहला भाग्य भगवान ही हमारा, भाग्य विधाता ही हमारा। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसे भाग्य की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा भाग्य, अब बोलेंगे आप, बालू भाई आप आगे आगे बोलो। दूसरा भाग्य हमारी पालना कर रहा, बहुत बड़ा भाग्य हो गया। किसी बच्चे ने राजा के पास जन्म लिया हो तो उसे भाग्यवान कहेंगे ना, इसकी पालना राजा ही परिवार में होगी। और हमारी पालना स्वयं भगवान करता है, करता है या कहने के लिए है, खिलाता कौन है, खिलाता है भगवान। कुमार कौन कौन बैठे हाथ उठाना जरा। अच्छा तो चिंता रहती है कौन खिलाएगा, सोच लो। मैं क्यों पूछ रहा हूँ समझिए ना, सोचते है कि बीमार हो गए, युगल तो है नहीं, कौन खिलाएगा हमें, बड़ी मुश्किल होगी। माताएं बच्चों को कहती हैं कैसे चलोगे तुम अकेले जीवन में, माताओं को बड़ा मोह होता है। एक कुमार है बेचारा, कहा मैं ज्ञान में हूँ, अच्छी पोस्ट पर है, मेरी माँ भी ज्ञान में है, पर कहती है शादी जरूर करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो डर रहा था कहीं मर गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं वो मरेगी नहीं, तुम चिंता न करो, उसको समर्पित कर दो बाबा को। तो माताओं को बड़ी इच्छा होती है हमारे बच्चे ज्ञान में भले ही चले पर शादी कर ले। और जब शादी कर लेते हैं फिर क्या इच्छा होती है माताओं की, एक पोतरा जरूर चाहिए, कुल कैसे चलेगा। ये भूल जाती है कि विनाश भी होने वाला है, कुल खत्म होने जा रहे हैं। तो कौन पालना कर रहा है, ढीला बोल रही माताएं, लगा नहीं कि आपकी पालना कर रहा है। कदा तो निश्चिंत जीवन, उसने देखो कितना अच्छा वायदा कर लिया, तुम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। बाबा ने बहुत अच्छी बात कभी कही है, क्यों बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा, क्योंकि तुम रोज बाप को भोग लगाते हो, बाप भूखा नहीं रहता तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा। और जो भोग ही न लगाते हो उनकी क्या गति होगी, सोच लो, भूखे रह जाएंगे ना। तो बाबा हम सबकी कितनी अच्छी पालना कर रहा है, ये नशा हो जाए। प्रभु पालना में जीवन पल रहा है, वो अगर हमें सूखी रोटी भी खिला दे तो क्या हो जाएगा, उसको खाते ही हमारे सारे रोग मिट जाएंगे। आपको पता नहीं होगा जब यज्ञ यहाँ आया वो में ब्रजकोठी में रहे, ठंड बहुत थी, यहाँ का पानी बहुत भारी, हवा भारी, लूज मोशन हो गए 70 लोगों को, ऐसा नहीं था। क्या किया होगा, शिव बाबा आ गए, थोड़ी सी दवाई थी, सबको अपने हाथ से आधी आधी खिला दी गोली और सबका लूज मोशन ठीक हो गया। लूज मोशन हुई है, लूज मोशन बहुत होने लगे, उधर से आए थे ना तो बाजरी से दो ढे खिला दिए ठीक हो गए, छाछ पिला दी ठीक हो गए। तो हमारी पढ़ाई की परीक्षा भी होती है, लेकिन साथ देने वाला कौन, ये तीसरा श्रेष्ठ भाग्य हमें साथ मिल रहा है स्वयं भगवान का। चौथा भाग्य सुनाए, माताएं सुनाएंगी अब। बाबा के संबंध में भाग सुना दे, पढ़ा कौन रहा है, स्वयं भगवान। माताओं को कम नशा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, सोच रही है बेचारी, घर की समस्याओं से दब गई है बहुत, निकल जाओ जरा बाहर। बेचारी नहीं है ना, मैंने गलत कह दिया ना, तुमने ठीक पकड़ा, माताओं ने किसी ने नहीं बोला कि तुमने गलत बोला। लग रही माताएं बेचारी, नहीं नहीं बेचारी ना। कल बाबा ने कहा जो कुछ भी है सब, बाबा तो व्यर्थ की बात कर रहे थे, मन पर कोई बोझ है, कोई चिंता है माताओं को, कोई दबाव है आपके सिर पर, वो सब बाबा को दे दो, पर देना आता है, यह गुही है बात। बाबा ने कहा ना लेना और देना, अति गुही बात है देना, मन के बोझ बाबा को देना और उसमें विश्वास करना कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, इसके लिए बहुत बड़ा विवेक चाहिए। गलती कहाँ होती है, हम क्या सोचते हैं, अभी अभी बाबा को अपनी चिंता दी और अभी अभी ठीक हो जाए, ये गलती हो रही है, अभी अभी नहीं होगा। किसी को बहुत कड़ी बीमारी हो, कैंसर हो गया हो भयानक, और वो डॉक्टर के पास जाए कि अभी गोली दे दो, अब तो बहुत एक्सपर्ट हो और हम ठीक हो जाएंगे, होगा? हमारी बीमारी कितने सालों की है, हजारों साल की है। इसलिए अपने मन के बोझ बाबा को देखकर निश्चिंत भी हो जाए और धैर्य चित्त भी हो जाए, विश्वास कर ले अब वो ठीक करेगा, चाहे दो दिन लगे, पांच दिन लगे, बीस दिन लगे, एक मास लगे, संपूर्ण विश्वास के साथ, और जितना हम निश्चिंत होंगे उतना वो चीज जल्दी ठीक होगी। हम चिंताएं करते हैं तो उसमें देर लगती है, सभी सीख लें ये बात। अगला भाग्य हमारा क्या लेकर आया है बाबा हमारे लिए, आज की मुरली स्वर्ग की सौगात लेकर आया है। आज की मुरली बहुत सुंदर थी, नीचे दादी रतन मोहिनी ने पढ़ी, पढ़ी बड़े सुंदर नशे से, सबको आनंद आ गया। आज की सारी मुरली ऐसी थी, डायरेक्ट से बाबा बोल रहा था। यहाँ किसने सुनाई है, हाँ तो डायरेक्ट से बाबा बोल रहे थे ना आज, बहुत अच्छी। जब हम ऐसी मुरली सुने तो हमें इसी नशे से सुनना चाहिए, डायरेक्ट भगवान हमसे बात कर रहा है, मैं तुम्हारा मोस्ट बिलव्ड हूँ, तभी तो तुम मुझे 2500 साल से बुलाते आए मिलने के लिए, तो बहुत सुख मिल जाता है। तो हमारे भाग्य बहुत श्रेष्ठ हैं, 3 युग तक हम कैसे रहेंगे, बोलो शब्दों को बहुत अच्छे, 3 युगों तक एवर हेल्दी, बोलो आगे एवर वेल्दी, और माताओं ने नहीं समझाई, ये चुप है बेचारी, संपूर्ण स्वस्थ, बहुत खुश, धन संपदा की कोई कमी नहीं, द्वापर युग में भी अथाधन संपदा भारत में रहती है। गुप्त काल के लिए भारत में गुप्त राजाओं का काल रहा है बहुत सारा, उसको इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है, जब घरों को ताले भी नहीं लगते थे, अथाधन संपदा थी। उससे पहले तो कई वंश जीत गए, मौर्य वंश और कई वंशों ने राज किया, भारत में अथाधन संपदा थे, लोग श्लोक के बारे में क्या कहेंगे? आधे कलयुग तक मनुष्य मुश्किल से पूरे जीवन में एक बार कभी बीमार होता था, ऐसे में रोज बीमार है। अब क्या है कलयुग के अंत में, एक बीमारी अगर लग गई तो जीवन भर की गारंटी, ठीक होने की या बीमार रहने की। हो रहा है ना ऐसे, जो कुछ लग गया अब वो जीवन भर चलेगा, गारंटी हो गई। और ये स्थिति बीमारी की, ये स्थिति तो बहुत छोटी है, 100-150 साल से ये बीमारियां बढ़ी हैं, उससे पहले बीमारियां बहुत नहीं थी। दूर दूर तक गांव एक टाउन में कोई एक वैद्य जी होते थे, बस वही काम करते रहते थे। अब तो गली गली में है और वहाँ भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, टाइम नहीं मिलता है। तो बाबा हमें ऐसा श्रेष्ठ भाग्य देते हैं, जो इस जीवन में भी भाग्यवान होंगे उनकी निशानी सदा प्रसन्न होंगे, कदम कदम पर उन्हें सफलता प्राप्त होगी, विघ्न कम से कम आएंगे, धन कैसा रहेगा, अगर स्वस्थ न भी हो तो मन तो स्वस्थ रहेगा ही, बच्चे कैसे होंगे, जो भाग्यवान होंगे उनके बच्चे। अब माताओं माता उत्तर देंगी, भाग्यवानों के बच्चे, ये उत्तर कठिन है माताओं को देना, वो सोचेंगे हम तो भाग्यवान हैं पर हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं हैं। नहीं, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, हमें बाबा से एक बात सीखनी है, रोज सीखे हम बाबा से, बाबा आते हैं, आप बाबा को ध्यान से देखो, क्या वो नहीं जानता कि सब बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं है, कितनी बार कह दिया सदा खुश रहो ये रहते ही नहीं, कितनी बार कहा व्यर्थ मुझे दे दो देते ही नहीं, बेफिकर बन जाओ ये फिकर लिए घूमते हैं, क्रोध छोड़ो ये छोड़ते नहीं, बुरा बोलना छोड़ो ये बुरा बोलते ही रहते हैं, फिर भी क्या कहता है बाबा, वहा मेरे बच्चे वहा। सुनते हैं या नहीं, ये प्रभु पालना उसका पढ़ाने का तरीका है। आप भी अपने बच्चों को यही कहो सदा, ये बिगड़ गए, ये मुझे बहुत तंग करते हैं, ये मेरी बात नहीं मानते, माता जी को नींद नहीं आ रही, अब अगर बाबा की नींद फिट जाए तो मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। आगे जगह बहुत है माताओं, आगे आ जाओ, वही माताओं को गाइड करो, सुप्रिया बहन माताओं को बताओ आगे आ जाए, देखो आगे आ जाए, अरे नहीं ये जो आपके आगे बैठी है, आ जाओ माताओं, मैं उठाऊंगा नहीं तो आओ आओ उठाओ, आगे आ जाओ, बेचारी पीछे बैठ जाती है चुप के, आ जाओ आपसे नहीं पूछेंगे हम, बैठो बैठो। अब हमें सदा खुश रहना है, कहने से तो काम नहीं होगा ना, पिछली बार भी हमने यहाँ 10 पॉइंट समस्याओं से संबंधित निकाली थी, आज हम निकालेंगे 10 संकल्प खुश रहने के, जैसे संकल्प जिसे याद करते हम खुश हो जाएं। बोलो कौन सुनाएगा पहले इधर से, वाह मेरा भाग्य, ये गीत जो आज बजाना गाते रहना, वाह मेरा भाग्य मुझे मिले भगवान, सबसे अच्छा गीत हो गया ना। दूसरा भाग्य है सोचने की, दूसरा खुशी का संकल्प, सोचने की बात नहीं, जो हमें खुश कर दे, नरोत्तम जी भगवान हमें 21 जन्म का भाग्य देने आ गया, खुश हो जाएंगे। और सोचो आगे है, हम भगवान के नैनों का नूर हैं, और बोलो स्वयं भगवान ने हमें चुन लिया है, सब बोलो, सोचो। कोच वाले बोले, कोचमैन, कोचमैन का अर्थ तो अलग होता है पर मैं कहता हूँ वैसे ही, बोलो हाँ हमारा वाह भाग्य, एक ने वहाँ बहुत अच्छा सुनाएगा हम सरोवर में, मैं तो खुश रहता हूँ कि मेरे साथ भगवान सोता है, मैंने उसमें जोड़ दिया सोता भी है और उठाता भी है, गुड मॉर्निंग भी करता है, गुड नाइट भी करता है, सब करते हैं या भूल गए? माताओं में जो जो गुड नाइट करके सोते हैं, आप उठाना जरा। अरे वाह, भाइयों में जो कभी कभी भूल जाते हैं वो हाथ उठाना। हाँ, भूलना नहीं, कोई बात नहीं, भूलना नहीं है। अब मुझे भी याद रहने लगा, बहुत रात को भूल जाते थे विशेष रूप से, सवेरे तो नहीं पर रात को सदे या बहुत काम हुआ तो भूल गए। चलो अब बाबा के पास बिल्कुल ऐसा अनुभव करेंगे, बाबा हमें बहुत प्यार कर रहा है, हमें अपनी पालना दे रहा है, हमारे सिर पर उसने हाथ रख दिया है। लास्ट पॉइंट पर आएंगे, खुशी के संकल्प आप लिखें, अपने अपने पास लिखें, हर एक को खुश देने वाले विचार अलग अलग भी हो सकते हैं। कुमार बैठे हैं, बहुत 20-25 पॉइंट्स लिखें, बहुत खुशी के। किसी मनुष्य के पास बहुत खजाना हो, अलमारी में रखा हो, अलमारी खोल के देखें, खुश हो जाएंगे ना। हमारे पास कितना खजाना है या नहीं? या ये खजाना ऐसा आनंद तो नहीं देता ना जैसा पैसे देंगे? क्या समझते हैं? खजाने खोल कर देखो जरा। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान, बोलो और आगे, त्याग तपस्या और सेवा। बहुत बड़ा टॉपिक है, और याद हो जो यहाँ वाले बैठे हैं उन्हें तो जरूर याद होगा, त्याग तपस्या सेवा पर पीछे बाबा की एक मुरली आ गई है, अव्यक्त रिवाइज, अव्यक्त मुरली। त्याग से जीवन में तेज आता है, त्याग एक बहुत बड़ा बल है, त्याग ही तपस्या का आधार है, त्याग नहीं तो तपस्या नहीं। बड़ा जोर से बजाए भाई, सुनाओ सुनाओ, बाहर जाके जाओ। अगर किसी का योग नहीं लगता तो क्या समझना चाहिए? उत्तर आ गया ना, तो त्याग की कमी है। और बाबा ने बहुत अच्छा लिंक जोड़ा है मुरली में, जितना त्याग उतनी ही तपस्या, और जितनी त्याग और तपस्या वैसी ही सेवा की सफलता। अगर सेवा नहीं हो रही है तो हम जान लें, उस मुरली में तो बहुत स्पष्ट है कि तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है। सुनाओ भाई, जाओ सुनाओ सुनाओ, त्याग नहीं है तो तपस्या नहीं तो सेवा भी नहीं। अब बोलो त्याग किस किस चीज का? मेरी ओर देखेंगे, त्याग किस किस चीज का? उस मुरली में तो ये है, जितना देह भान का त्याग उतनी ही तपस्या होगी, ये तो स्पष्ट है ही। लेकिन हम कुछ त्याग करेंगे सूक्ष्म, हम 10 पॉइंट निकाल लेते हैं त्याग के, है नींद का? हाँ नहीं, ठीक कहती है भाई, हंसो नहीं, सारी नींद का नहीं कर देना त्याग, आलस का त्याग, आलस का त्याग, बहुत अच्छा बोला। और कौन सा त्याग? भोजन का? अरे नहीं, तुम तो अच्छे अच्छे त्याग कर रहे हो, ये नहीं, भोजन तो खाओ, भोजन में आसक्ति का त्याग। और बोलो, व्यर्थ बोल व्यर्थ व्यवहार इन सब का त्याग और चलो पर चिंतन पर दर्शन का त्याग। बोलते जाओ, आपको चल गई आपके, अब तो इंजन स्टार्ट हो गया ना, या नहीं हुआ? मान की इच्छा का त्याग, बुद्धि के अभिमान का त्याग, मैं और मेरेपन का त्याग, अवगुण देखने की आदत का त्याग। अब आगे बढ़ो, वस्तु वैभवों के आकर्षण का त्याग। पीछे वाले बोल सकते हैं, श्रोता नहीं, केवल बोलो। विशेषताओं का त्याग, नहीं कुछ और बोलो, ये नहीं और कुछ बोलो। अनुमान लगाने का जो संस्कार है इसका त्याग, पास्ट की बातों का त्याग, भूल जाना, मोह का भी त्याग, सभी विकारों का त्याग। दो चीज और बहुत अच्छी और सूक्ष्म, व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग, अपवित्रता की इच्छाओं का त्याग, कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग। ये सूक्ष्म बातें हो गई, और सोचो किसका त्याग, ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना, इनका त्याग। व्यर्थ समय गंवाने की आदत रहती है, इसका भी त्याग। साधारण संकल्पों का भी त्याग, बोलो मैं मेरा आ गया, और बोलो बेभान भी आ गया, और बोलो क्रोध का त्याग, चिंताओं का भी, ये ज्ञान बल से होगा, पर विशेष रूप से क्रोध जो अग्नि है, जिसके त्याग के बिना योगी नहीं बना जा सकता, उसका त्याग भी जरूरी है। दूसरों के लिए व्यर्थ दुर्भावनाएं, बदले की भावना का त्याग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बहुत अच्छा सब कुछ करते हो, लेकिन उनके मन में दूसरों के लिए दुर्भावनाएं हो, तो योग नहीं लगेगा। एक और बहुत अच्छी चीज, हम बाबा की सेवाएं करते हैं बहुत अच्छी, लेकिन सेवा करके अगर हम क्या चाहते हैं, मान, उसका रिटर्न चाहते हैं साथ साथ, मुझे ये पद भी दिया जाए, मुझे स्टेट सेक्रेटरी बनाया जाए, मेरा यहाँ नाम हो, तो सेवाओं का पुण्य नष्ट हो जाता है। ये त्याग, ऐसी कामनाओं का भी त्याग, सेवा की बाबा के लिए की, बाबा को अर्पित, मेरे से पूछ के ही सब काम किया जाए, मेरी विदाय ली जाए, ये बड़ी सूक्ष्म माया है जो अनेक योगियों को योग के मार्ग से दूर ले जाती है। इन सब से मुक्त जो होंगे वही सच्ची तपस्या कर सकेंगे। और भी कुछ सूक्ष्म धारणाएं जिन पे हर एक व्यक्तिगत रूप से गौर करे, हमारे पास कौन सी कमजोरियां हैं जो योगी नहीं बनने देती, और योगी नहीं बनने देती उसका दूसरा स्वरूप कि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं आजकल। ये वृत्ति बढ़ती जा रही है दुनिया में, बहुतों के साथ हो रहा है, बात केवल कुमारों की नहीं, कुमारियों की नहीं, बड़ों के साथ भी हो रहा है। व्यर्थ संकल्प इतने चलते हैं कि चलाने वाले को ये पता नहीं क्यों चल रहे हैं। कोई संकल्प तो चलते चिंताओं के कारण, कोई संकल्प चलेंगे विकारों के कारण, पर कुछ ऐसे संकल्प चलते हैं जिनका कोई कारण नहीं है और चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं कुछ पता नहीं। इस सब के पीछे भी कहीं ना कहीं किसी त्याग की कमी रहती है। कोई अनुमान काम करता है, कोई मैं और मेरापन काम करता है, कोई मान की अभिलाषा काम करती है, निष्काम नहीं होते हैं, ये सब चीजें आती हैं। दूसरी बात तपस्या। तपस्या को कई रूप दिए जा सकते हैं। योग की भी एक तपस्या है, तो पवित्रता की भी एक तपस्या है, तो आत्मिक दृष्टि की भी एक तपस्या है, स्वमान की भी एक साधना है, और योग लगाना, एकाग्रता, एकाग्रता ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। इन सब पर हमें ध्यान देना है। सबसे बड़ी चीज तो एकाग्रता है ना। बहुतों की एकाग्रता इतनी कमजोर होती है कि सारी मुरली सुन ली और क्या सुना पता ही चला। सुन तो ली, बहुत अच्छा था, कुछ कुछ कह तो रहे थे बाबा, कुछ अच्छी बात, पर क्या कह रहे थे अंदर गया ही नहीं। नहीं याद तो छोड़ो, अंदर ही नहीं गया। ये डिप्रेशन का स्वरूप है। आज ही मुझे दो डिप्रेशन वालों के फोन आए। उनकी यही मनोस्थिति थी कि हम मुरली सुनते हैं, सुन तो रहे बैठे हैं, देखने वालों को लगेगा ये बहुत अच्छा सुन रहे हैं, नींद भी नहीं है, लेकिन अगर पूछे क्या सुन रहे हैं, सब जैसे ऊपर से जा रहा है। ये मनोस्थिति बनती जा रही है। इससे मुक्त होना है, और इससे मुक्त होने का अच्छा तरीका ही है स्वमान का अभ्यास। आप सबको पता ही होगा, नीचे शांतिवन में अन्ना हजारे भी आए और एक एक्टर भी आए हुए थे, आज उनका उसको क्लास में लाए थे, साउथ इंडिया के वो हैं सुमन, इधर भी आए थे, हाँ दिलवाड़ा भी गए हुए थे, फिर ज्ञान सरोवर भी आए। नीचे तो अच्छा उनका परिचय वरिचय सब अनुभव हुआ था। तो अन्ना हजारे का बहुत अच्छा रहा, कल तो एक डेढ़ घंटे का प्रोग्राम चला दिन में 11 बजे से, अच्छा बोलता है। मैं और मेरे पे बहुत बोल रहा था, अपनी बातें भी सुना रहा था, मैं सन्यासी आदमी हूँ और फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बेदाग हूँ मैं, जैसे लोग अपनी बातें करते हैं। लेकिन बाबा के पास वो दूसरी बार आया था अभी, और बहनें उससे मिलती जुलती भी हैं वहाँ जहाँ वो है, और ज्ञान के संपर्क में भी अच्छा रहता है। उसको बैज भी लगा दिया था, पीस ऑफ माइंड के लिए उसका एक घंटे का इंटरव्यू भी हुआ, लिया गया, वो आ जाएगा। तो एक अच्छा प्रोग्राम कल भी है सेवा का नीचे चला, बाबा ने तो कहा ही, खड़े हुए थे वो, आप सबने सुनाई वो, तो बहुत अच्छी सेवा बाबा की हो रही है। लेकिन टोटल सेवाओं की सफलता किस आधार पे होगी? तपस्या के आधार से। बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में सारे रहस्य खोल दिए हैं, कुछ भी छुपाया नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर है उनमें। एक बहुत सुंदर मुरली ऐसे ही, कहीं की भी सेवा का आधार है निमित्त आत्माओं के वाइब्रेशंस या उस स्थान के वाइब्रेशंस, यानी सेंटर के। अगर सेंटर में योग ही नहीं चलता हो, कोई सवेरे भी योग न करता हो, बाबा के कमरे में बैठते ही न हो, तो वहाँ सेवा वृद्धि भी नहीं होगी। वहाँ ये होता है, 5 नए आए तो 5 पुराने गायब, 10 साल से चलने वाले गायब, फिर 2-4 नए आए, फिर 2-4 गायब, 20 साल पहले जो स्टूडेंट थे वो कोई दिखाई नहीं देता। वाइब्रेशंस किसी भी स्थान के बहुत पावरफुल हों, उसी में आकर्षण है। देवकुल की आत्माएं आकर्षित होके यहाँ आती हैं, और जो आ गए उनकी पालना होती है। अगर वाइब्रेशन अच्छे नहीं है तो पालना नहीं होती। सबने देखा, कल की बात करें, बाबा हमारे बीच में आए, बाबा ने कोई एक एक से तो बात नहीं की, बाबा ने मुरली भी कोई लंबी चौड़ी नहीं चलाई, कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं थी, दो ही थी, भाग्य और खुशी। ये बात हमने हजारों बार सुनी है, लेकिन सबको कैसा लगा कल? कैसा लगा कोई अपने शब्दों में बोले, फिर मैं सुनाता हूँ मुझे कैसा लगा। सुशील भाई, अरे कि मुझे देख रहे थे कि मुझे कैसा लगा। अच्छा उत्तर सुंदर दिया तुमने। तो मैं भी बाबा मैं पूरा टाइम बैठा और फिर मैं गया अपने कमरे में, मन डीप साइलेंस में, प्रभु पालना का रस। हालांकि मैं तो कोई नई बात बताई गई थी, मैं कोई बाबा से पर्सनल मिले थे, क्यों ये सब हुआ, बहुत रस। मैं सोचता रहा कि बाबा आपकी पालना इतनी सुंदर है कि चारों युग भी अगर हम आपका गुणगान करते रहें तो कम होगा, और सतयुग त्रेता में कहीं ना कहीं हम आपके एहसान मंद तो रहेंगे ही ना, भले व्यक्त नहीं करेंगे। बहुत डीप सुख मिल रहा था। क्यों था ये, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, वाइब्रेशन। बाबा एक एक को तो कुछ नहीं दे रहा था ना, लेकिन वाइब्रेशन ऐसे फैल गए थे कि उसमें जितने भी भाई बहने थे, ही नहीं सब सेंटर्स पर लाखों, सबको ईश्वरीय पालना का सुख मिला है। मिला होगा या नहीं, ऐसे ही सेंटर्स के वाइब्रेशन अगर पावरफुल कर दिए जाएं, योग्युक्त कर दिए जाएं, तो सेवा स्वतः ही होगी, पालना स्वतः ही होती रहेगी। पालना कोई चाय पानी पिलाना, टोली खिलाना नहीं, पालना है श्रेष्ठ वाइब्रेशन की, जिसमें आत्मा को आंतरिक बल मिलता हो, जिसमें आत्मा को उमंग उत्साह बढ़ता हो, जिसमें आत्मा को लगे जैसे भूखे को भोजन मिल जाए, हम सेवा स्थान पर आए और भरपूर होकर गए। मुरली वही है, आत्माएं वही हैं, लेकिन वहाँ आना ही पालना हो जाए। और ऐसे बाबा के कई सारे सेंटर लाइट हाउस बनकर उभरेंगे। विनाश काल में वही सेंटर सारे संसार को सकाश देंगे, स्थान से ही सकाश पहुंचेगी, क्योंकि जो हम काम करते हैं, वाइब्रेशन जो हम फैलाते हैं, जो हम योग तपस्या करते हैं, हम मधुवन में बैठे हैं, हमारी योग तपस्या के वाइब्रेशन दीवारों में भी भर गए हैं, फूलों में भी भर गए हैं, शांति स्तंभ में भी भर गए हैं, इनसे वाइब्रेट होंगे, फैलेंगे चारों ओर। तो त्याग जितना उतनी ही तपस्या, उतनी ही सफल सेवा। जिनके पास त्याग और तपस्या है उन्हें सेवा के लिए बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, उन्हें सेवा वृद्धि के लिए बहुत भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। वो एक प्रोग्राम करेंगे, बहुत सारे निकल जाएंगे। कोई आए मेरे पास, गुजरात के एक सेंटर के भाई आए मिलने, कहा हमने बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम किया, छोटे सेंटर से 40,000 लोगों ने देखा 3-4 दिन में, और 120 लोगों ने कोर्स कर लिया। मैंने पूछा बचे कितने, 8। मैंने कहा भाई ये तो बहुत कम रह गए, 120 में से 7 तो बचते, अभी 8 में से भी तो छठाई होगी ना, ऐसा ना एक ही बच जाए, कभी कभी ऐसा भी हुआ है बहुत जगह एक बच गया। तो उसे कहते थे तुम बड़े महंगे हो भाई, शुरू में कहते थे 2,50,000 खर्च करके तुम्हारा जन्म हुआ है। फिर मैंने पूछा क्यों ऐसा हुआ, तो उसका सार यही था कि पालना बहुत अच्छी नहीं है, सभी अपने स्थानों के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर बनाए। ये बाबा की बातें हैं, यहाँ किसी पे कमेंट करने की अगलानी करने की बात नहीं, वैसी है। त्याग का बल तपस्वी बनाएगा, त्याग और तपस्या का बल सेवा को सफल करेगा। ये अनादि अविनाशी सिद्धांत हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गई, इसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। कोई कहे तो गलत है, हम बड़े बड़े प्रोग्राम कर दें सेवाओं की सफलता हो जाएगी, नहीं, स्थिति से ही सेवाओं की सफलता होगी। तो सभी इस बात पे बहुत ध्यान दे। केवल सेवा बहनों को नहीं करनी है, हर एक बाबा का बच्चा किससे सेवा करता है? अपने चेहरे और चलन से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी स्थिति से, अपने योग से, अपनी सुभावनाओं से करते हैं या नहीं? और सभी ब्राह्मण परिवार को अगर आप देखें, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जिस माता की स्थिति बहुत अच्छी है, सारा परिवार पीछे पीछे है। जिस कुमार की स्थिति बहुत अच्छी है, सारा परिवार पीछे है। दसवीं क्लास में कन्या पढ़ रही है, स्थिति बहुत अच्छी है, सारा परिवार खींच खींच कर आ रहा है। दसवीं क्लास की लड़की को परिवार कह रहा है, ये तो हमारे घर में देवी है। स्थिति में ही आकर्षण है, इसलिए सभी अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान देंगे और सदा खुश रहने की प्लानिंग कर लें। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। ऐसा अपने को दृढ़ कर दें कि मुझे अपनी ये स्थिति छोड़नी नहीं है। ऊपर ऊपर से जाए बाकी सब कुछ, समस्याएं भी हैं। बाबा ने भी कह दिया कलयुग है तो सतयुग तो नहीं होगा ना। अंधकार ही हो और कोई कहे अंधेरा क्यों है, काली रात हो बिल्कुल अमावस की और कोई परेशान रहे अंधेरा क्यों है, होगा कुछ हल? अंधेरा नहीं होगा तो अमावस में क्या होगा? तो कलयुग में सब कुछ होगा, लेकिन हमें अपनी स्थिति को उससे अलिप्त रखना ही है। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करके खुश रहने के कम से कम अपने पास कम से कम 5 पॉइंट तो रख ही लेंगे, लिखें बहुत सारे, उनमें से 5 चुन लें, उनको याद करके खुश रहेंगे। ओम शांति। कल बाबा ने एक शब्द और बोला, रिपीट कर देता हूँ, खुशी में बहुत करामात है। इसका अर्थ है जिसकी स्थिति खुशी से भरपूर होगी, चमत्कारिक कार्य उसके द्वारा होंगे। Thank you.
Thank you.